बोलती कहानियां।
अनुराग शर्मा का नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरिशंकर परसाई जी की बोर, जिसको स्वर दिया है नितिन व्यास ने।
12 बोर एक बंदूक होती है, लेकिन बोर एक तोप होती है। दुनिया के हर कोने में, हर जाति में बोर पाया जाता है। न्यूयॉर्क की भीड़भाड़ में भी बोर मिलेंगे और उत्तरी ध्रुव के वीराने में भी, कश्मीर के उद्यानों में भी बोर मिलते हैं और सहारा के रेगिस्तानों में भी। और मेरा विश्वास है कि शेरपा तेंजिंग के साथ जो दल गौरीशंकर की चोटी तक पहुंच गया था, उसमें भी एकाध बोर जरूर होगा जो रास्ते में बाकी लोगों को तंग करता गया होगा। मैं बोर को दुनिया का सबसे हिंसक प्राणी मानता हूँ। अगर किसी जघन्य अपराधी को दंड देना है तो उसे चंद घंटे किसी बोर के हवाले कर दीजिए, जिंदगी भर के लिए सबक सीख जाएगा। अगर किसी को हमारी हत्या करनी हो तो हमें किसी बोर के साथ किसी कमरे में 4-6 घंटे बंद कर दीजिए, दरवाजा खोलने पर हम मरे मिलेंगे। कोई गुंडा सड़क पर आप पर हमला करे तो आप चिल्लाइए और रक्षा के लिए पुलिस हाजिर, पर बोर आप पर दिन दहाड़े आक्रमण करे, घंटों जुल्म ढाए, मगर आपकी सहायता के लिए ना कानून ना पुलिस। अरे भूत भगाने के लिए तो हनुमान चालीसा भी है, बोर को भगाने के लिए ना तो तंत्र है ना मंत्र। बोर भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है बकवादी बोर, जो घंटों आपके पास बैठकर दुनिया के हर विषय पर बके और आपको केवल कहने का मौका दे। मौन बोर, यह घंटों आपके पास बैठेगा पर बोलेगा नहीं, बीच बीच में अपने ऊब कर जमाई लेगा और कहेगा, हाँ और क्या समाचार है। आप कोई समाचार नहीं कहेंगे, पर वह यह मानकर कि आपने कुछ समाचार कहा है, 10 मिनट के बाद कहेगा, हाँ और क्या समाचार है। जिज्ञासु बोर, यह आपके पास बैठकर तरह तरह के सवाल पूछकर प्राण ले लेगा। एक सांस में पूछेगा वेदांत दर्शन की माया और सांख्य दर्शन की प्रकृति में क्या साम्य है, और दूसरे ही क्षण पूछेगा, क्यों साहब नरगिस का क्या पता है। साहित्यिक बोर, इस वर्ग में कवि और लेखक आते हैं। इन्हें श्रोता को देखकर वह खुशी होती है जो भूखे आदमी को 56 प्रकार के भोजन की थाली को देखकर। चापलूस बोर, यह बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि यह बड़ा मोहक होता है, इसलिए कि यह आपकी तारीफ करता है। इसकी पहचान यह है कि यह हमेशा दंत निपोड़ता रहता है और इसके मुख से हैं शब्द निकलता रहता है। यह आपकी छींक को भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना बताएगा और कहेगा कि एक बार गौतम बुद्ध को भी ऐसी ही छींक आई थी। मधुर बोर, यानी वह रूपवती कोमलांगी जिसका रूप आकर्षक हो और बातचीत निहायत रद्दी। इसके प्रहार से पैंतरे बदलना चाहिए, उसकी बात सुनने और खूब दिलचस्पी लेने का नाट्य करते हुए उसकी बात बिल्कुल ना सुनकर रूप सुधा का पान करते जाना चाहिए। रिटायर्ड बोर, वे अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी जो आपस में एक दूसरे को बोर करके समय काटते हैं, बेटा और बहू की निंदा करते हैं, क्या बताएं तिवारी जी, लड़का नालायक निकल गया और औरत के कहने पर चलता है, और वह हमारी बहू हमारी चोरी से हलवा बनाकर खा लेती है। आक्रमणी बोर, यह चीते की तरह चालाकी से हमला करता है, सड़क पर आपको जाते देख कर चुपचाप पीछा करेगा और जहां आप रुके कि इसने आक्रमण किया। यह आक्रमणी बोर से मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। यह मेरा हाथ पकड़ लेता है, बात करते करते आगे बढ़ता जाता है और थोड़ी देर में उसका एक पांव मेरे पांव पर होता है, उसका मुख मेरे मुख पर और उसके मुख के थूक के कण मेरे मस्तिष्क का अभिषेक करते हैं। सार्वजनिक बोर, इस वर्ग में भाषणबाज नेता होता है जो गांधी मैदान और तिलक भूमि में सार्वजनिक रूप से बोर करते हैं। एक नया प्रकार पिछले हफ्ते ही मिला। एक मित्र के यहाँ मैं गया तो मकान के दूसरे हिस्से में दीवार के उस पार 2 व्यक्ति बात करते हुए मिले, एक महाराष्ट्र का ब्राह्मण, दूसरा पंजाब का जाट। मैंने मित्र से पूछा, क्यों भाई यह सह अस्तित्व कैसा है। उन्होंने कहा, दोनों बड़े दुखी हैं, ना इन्हें श्रोता मिलता है ना उन्हें, इसलिए परस्पर घंटों बोर करते हैं। इतवार को दोनों भेड़ाघाट जाते हैं और वहां रम्य प्रकृति की छवि के बीच परस्पर बोर करते हैं। उनमें एक जिसने कभी चूहा नहीं मारा और शेर के शिकार का अनुभव सुनाता है, और दूसरा जिसके खाने का ठिकाना नहीं था, हवाई जहाज की दुकान खोलने की बात करता है। पर इस सब का बादशाह होता है बोर डिलक्स, यानी वह बड़ा आदमी जिसकी बात छोटे आदमी मजबूरन सुनते हैं, यह रौब गांठ कर बोर करता है। इसमें आते हैं उद्घाटन भाषण देने वाले लोग, महाकवि, महासंगीतज्ञ, मंत्री, महानेता और बड़े अफसर। जिंदगी में कई बोर मिलते हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले एक ऐसे मिले थे जिनकी याद करके मैं अभी भी चौंक उठता हूँ। मुझे शहर में आए थोड़े ही समय हुआ था कि वह मुझे सूंघते हुए एक दिन आ पहुँचे, अपना परिचय दे डाला और ले मेरा डाला। इसके बाद तो कभी भी आ जाते, कई चांदनी रातें बर्बाद की उन्होंने मेरी। कितना दुख उन्होंने मुझे दिया, उसका एक तिहाई बेचारे रावण ने ऋषियों को पहुंचाया था कि राम का अवतार हो गया, पर मेरे लिए एक वानर तक ना भेजा गया। लेकिन मुझे राम का संकोच समझ में आया, अगर वह अवतार भी ले लेते तो सीता की खोज करने और रावण से लड़ने के लिए उन्हें एक बंदर भी ना मिलता, क्योंकि सब बंदर इस बोर की तरफ हो जाते अपने वंश का जानकर। वे कवि थे, लेखक थे, आलोचक थे और मिशनरी बोर थे। कपड़े अस्त व्यस्त, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल लंबे और रूखे, चप्पलें टूटी, बगल में किताब। सड़क पर चलते तो लगता कि वन मानुष स्टेज पर आदमी की नकल कर रहा है। नाम था मदन, जिसका अर्थ नागरी प्रचारिणी के हिंदी शब्दकोश के पृष्ठ 218 पर कामदेव लिखा है, पर आप इन्हें देखें तो आपको लगे यह जैसा नाम वैसा गुण इस कहावत के मुंह पर कसकर चांटा मार रहे हैं। उनका ख्याल था कि जो कलाकार जितनी अजब शक्ल का होगा वह उतना ही महान होगा, और इस स्टैंडर्ड से मदन जी दुनिया के सबसे महान कलाकार हुए, क्योंकि उन्हें देखकर उन्हीं के घर का कुत्ता भौंकने लगता था। वे कविता गाते थे बहुत रस विभोर होकर, स्वर की क्या बात है, ऐसा स्वर मुझे लगता था कि हिज मास्टर्स वॉइस रिकॉर्ड कंपनी के रिकॉर्ड पर श्रोता के स्थान पर मदन जी की फोटो क्यों नहीं छपती। संसार भर के विषयों पर बात करते थे, संसार की सभी भाषाओं की किताबें उन्होंने पढ़ी थी। किसी भी किताब का नाम लीजिए, वे कहेंगे हाँ हमने पढ़ी है, अच्छी है। एक बार एक अंग्रेजी लेखक स्कॉट पर बातें हो रही थी, किसी ने पूछा मदन जी आपने स्कॉट सिमुलेशन पढ़ा है? मदन जी बोले वाह भला स्कॉट सिमुलेशन हमसे छूट सकती है, कॉलेज में ही पढ़ ली थी। स्कॉट की कला इमल्शन में ही चरम बिंदु पर पहुंचती है। मेरा नया परिचय था। एक इतवार को मैं सुबह लगभग 9 बजे बाल कटाने जा रहा था कि आप चौराहे पर मिल गए। देखते ही नागफनी के कांटे की तरह खिलकर बोले वाह आपके तो सवेरे सवेरे ही दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। होगा उनका सौभाग्य, मेरी जिंदगी में तो वैसा अभागा दिन कभी नहीं होगा। पर वह बातें करने लगे। पहले मैंने उनकी बात का जवाब एक एक पैराग्राफ में दिया, फिर संयुक्त वाक्य में, फिर साधारण वाक्य में, फिर केवल क्रिया और संज्ञा में, फिर केवल क्रिया बोलने लगा, फिर केवल हाँ या नहीं, फिर केवल हूँ, आखिर मौन हो गया। पर उनका उत्साह कम ना हुआ। एक डेढ़ घंटे बाद वह बोले चलिए चाय पिए। वह किसी को मुफ्त में बोर नहीं करते, पेमेंट करके बातें करते थे, चाय नाश्ता देते थे। चाय पी, आखिर एक घंटा बातचीत का दूसरा दौर चला। आखिर मैंने कहा मुझे बाल कटाने जाना है। वे बोले चलिए मैं भी वहीं बैठूंगा, बहुत दिनों बाद तो सत्संग हुआ है। वह अब शरद चंद पर बोल रहे थे। मैंने जाने किस मनहूस सभा में कह दिया शरद के पात्र हम तुम जैसे मानव कम लगते हैं। आज सोचता हूं कि मैंने यह क्यों कह दिया, मैं गूंगा क्यों नहीं हो गया। इस वाक्य से उन्हें बिजली छू गई। वे बहुत उत्तेजित होकर बोले ये क्या कहते हैं आप? शरद पर लगाया गया यह आरोप मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप है, मैं शरद के लिए अपनी गर्दन कटवा सकता हूं। मैं आपको समझाता हूं। और उन्होंने वहीं सड़क के किनारे मुझे डेढ़ घंटा खड़ा रखकर शरद के पात्रों की मानवीयता समझाई, सव्यसाची, अभया और राजलक्ष्मी के बालों की खाल खिंचाई। बड़ी मुश्किल से नाई की दुकान पर पहुंचा, बाल कटाने कुर्सी पर बैठा तो मेरे ठीक पीछे बेंच पर बैठ गए और आईने में मेरे प्रतिबिंब से बातें करते गए। मैं आईने में उनका चेहरा देखता तो सहम जाता। आखिर मैंने आंखें बंद कर ली, बाल कट चुके। नाई ने पूछा बाबूजी बाल कट गए? मैंने कहा हाँ भाई। तुझे बालों की पड़ी है, मेरी यहाँ गर्दन कट रही है। नाई की दुकान से उठा तो मैंने सोचा अब मुक्ति मिलेगी। मैंने घड़ी देखकर कहा 1 बज गया, अब चलना चाहिए। नमस्ते। वह बोले, घर जाओगे ना? मैंने कहा हाँ, घर ही जाऊंगा। वे बड़े सहज भाव से बोले, तो चलिए आपके घर तक पहुंचा दूं। मेरा हार्ट फेल होते होते बच गया। मैंने तिनके का सहारा लिया, कहा, आपको भोजन वगैरह भी तो करना होगा। वह बोले, अरे साहब, जब साहित्य चर्चा में डूब जाता हूँ तो मेरी भूख प्यास सब भाग जाती है। फिर आपका सत्संग कब मिलता है? उस समय मुझे लगा कि ईश्वर यह विश्वास कर लेता तो अच्छा होता। जब उन्होंने हाथी को मगर के चंगुल से छुड़ाया तो मुझे फिर सोचा, इस वक्त शैतान का जोर अधिक है, तभी तो मदन जी मुझे मिल गए। मैं घर चला और मेरे साथ रास्ते भर वह बोलते गए। मेरे घर के सामने फाटक पर कोहनी टिका एक घंटा उन्होंने फिर मेरा दिमाग चाटा। आखिर वह बोले, अच्छा अब मैं चलूं। मुझे बेहद खुशी हुई और मैंने विदाई के उपलक्ष में कहा, कभी भी कुछ लिखिए तो सुनाइएगा जरूर। बस वह आधा घंटा और रुक गए और मुझे साहित्य रचना की कठिनाइयां समझाते रहे। अंत में कहने लगे, क्या करें परसाई जी, वक्त ही नहीं मिलता। कल ही लिखने बैठा था कि एक महाशय आ गए और घंटा भर बोर करते रहे। मैंने मन में कहा, हाय रे तुम, कहीं दूसरे की पीर भी समझ सकते, कुछ मैरियों पीर हिसे परसों। 3 बज गए, वह चल दिए। 4 कदम चल कर रुके और बोले, अभी तो मैंने आपको शरद का एक पहलू बतलाया है, दूसरा पहलू फिर कभी बतलाऊंगा। वह चले गए और मैं शरद के दूसरे पहलू की चिंता में घुलता रहा कि एक दिन सुना उनका कहीं तबादला हो गया है, पता नहीं जिस वह गए हैं वह अब भी उजाड़ हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ होगा तो जल्द ही हो जाएगा।